ग्रिमाया मंगल गावती जगत किया हैरान, सवा लाख उपकार है एक लाख नित खान। ऐसी दूती जोगनी जगत किया बैरून, आन अटक माने नहीं ये माया चढ़री खून। दानी को नहीं देत है नहीं रखे वर्ष करोड़े, माया चाली सोम को बंधी सोम गल डोरे। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा माया जो दानी व्यक्ति होते हैं वो संग्रह संचन नहीं करते, और जो सोम होते हैं जो कंजूस होते हैं उनके पास माया का संग्रह गना होता है। तो क्या बताते हैं, या माया मेरी भई गई सोम दरबार, दानी के नहीं जात है के कारण करता रे। दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी ही जो नप जय निज दास। सिर संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साज, ज्ञानी गलता ना रहे ना ममता की दाज। अब यहां प्रश्न उत्तर आप ही कर रहे हैं परमात्मा के। हे परमात्मा, या माया जो है दान करने वाले भगत के घर पे, दानी के घर इतनी माया जैसे औरों के पास होती है, लोग दिखावा करते हैं, तो भक्ति से परिचित व्यक्ति इस माया के गणा पीछा नहीं लगता। तो यहां प्रश्न किया है कि दानी कह नहीं जाते हैं क्या कारण करतार। तो परमात्मा कहते हैं मैं अपने भगत के पास इस विष को घना नहीं रहने देता, और ज्ञानी दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी ही जो नप जय निज दास। कहते हैं अपने जो दान करते हैं उनको भक्ति गरीबी अधीनी और भक्ति गरीब बंदगी देता हूं ताकि मेरी आत्मा इस काल के जाल से निकल सके। और माया तो इस जीव की बेड़ी है, गले पैरों में पड़ जाती है। शील संतोष विवेक दो दया धर्म कुल साज, यानी भक्त को तो मैं शील संतोष विवेक। विवेक क्या बताते हैं कि जैसे यही विवेक है भाई, माया परमात्मा साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। शील संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साज, और उस पुण्यात्मा के अंदर दया भर देता हूं, धर्म धार्मिक बनाता हूं, और वो फिर इस माया की आग में नहीं जलता। माया प्रत्यक्ष काल है ये माया प्रत्यक्ष देव, और माया राजक राम है भोजन जोगी सेव। घेरे घारे काल है और सचे सर्वस जाए, ले डोबे गीतास को या माया जीवित खावे। कहते हैं जो संचित करते हैं जोड़ते हैं संग्रह करते हैं वो तो खराब करेगी, ये तो काल है तेरा। भक्ति में स्नान करे आगे से मत रोक, चलती को तू चलन दे हंसा पावे मोख। साच बाच कर क्या कह रहे ये मुक्ता रेणा संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े दंत। गरीब रावण का कुल वंश सोने डूब गया दे माही, रावण का कुल वंश सोने डूब गया दे माही, और संचत संचत ना थक्या और पाया गाम न ठाई। माया कहते रावण के लिए माया जोड़न तो छे क्या नहीं, और फिर कहते हैं कि नामो निशान नहीं रहा, वह माया यही रहेगी। माया जोड़े सोम लगी पाप की पीठ, और साधु नैन ना देखते ये माया कौआ बीट, भक्त हैं संत हैं कहते हैं ये माया के ऊपर आसक्त नहीं होते। क्या बताते हैं, इंद्र दा राज कागदा बिस्टा, परमात्मा कहते हैं जब हम आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना सच्चाई इस मालिक का तत्व ज्ञान, तो आपके लिए स्वर्ग का राज भी काग की बीट दिखाई देगी। पुणात्मा बहुत बुरी तरह बांध दिया अपने को यहां इसकार भगवान ने। अब इस यहां से आपका मन हटाने के लिए ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दिए जाते हैं परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के, और इनको बहुत गहराई से आपने सुनना है, बहुत सावधानी से और गहराई से विचार करना है, तब आपके अंदर इसका रिएक्शन होगा। आप अंधे हो रहे थे माया जोड़ने में, आगे पीछे कुछ नहीं देखते थे, हम सभी ऐसे ही थे, जब से मालिक का ये ज्ञान हुआ है ओए होए, उसी दिन से एक नया परिवर्तन आत्मा में आप आ जाए, क्योंकि ये अंदर रिएक्शन करती है परमात्मा की वाणी, ये वैसी नहीं होती एंटीबायोटिक है, ये एकदम अंदर से बदलाव शुरू होगा, लेकिन थोड़ा समय अवश्य लगता है। माया साची सोम को ये लगी पाप की पीठ, साधु नैन न देखते या माया कौआ बीट, कहा इंद्र के धाम की सभी लगी लार, सतनाम उर्म धरा ये संत उतर गे पार, माया मैलों चढ़ गई ये मारे मोटे मीर, को एक साधु बच गए ये फूके फकर फकीर, माया मैलों चढ़ गई खा लिए बड़खान, योद्धा मारे गर्द करे कोई न पावे जान, एक माया दुख भंजनी एक माया दुख मूल, एक माया तो गंध है एक माया है फूल। कहते हैं एक माया दुख भंजनी यानी दुखों को दूर करने वाली है, और एक माया दुख मूल, एक माया दुख का कारण है, जड़ है, और एक माया तो गंध है एक माया है फूल। अब कौन सी तो दुख बंधन करने वाली माया है, कौन सी दुख यानी फूल है, और कौन सी गंध है गंदी है। दान माया दुख भंजनी जोड़त है दुख मूल, अब है अंतर की गंध है या दिखत की है फूल। कहते हैं दान जो करते हैं या माया तुम्हारे संकटों का निवारण करने वाली है, और जो जोड़ जोड़ के रखते हैं ये सब दुखों की जड़ है तुम्हारी। जिसके पास धन है उसने उसको रात में भी नींद नहीं आती, क्योंकि धन दो नंबर के काम बिना नहीं बनता, और दो नंबर के काम में दिन रात दुखी रहा इंसान, फिर वो माया ना कोई ले जाएगा कोई दे कोना को, कभी किसी बात की चिंता, फिर झगड़ा हो जाए, लठम लठा मुकदमे चला है बिरान वाटी। तो क्या कहते हैं कि दान माया दुख भंजनी संत तय दुख मोल, अभय अंतर की गंध है दीखत की तय है फूल। माया सर्वस्मान है माया सर्वस मध्य, दास गरीब सतगुरु कहें यह तजो काल की हद, यानी काल की हद, इनकी इसकी बाउंड्री से बाहर चलो जब सुख होगा। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीब दास साहेब जी कबीर परमेश्वर की महिमा बता रहे हैं। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब सुख का सागर क्या है, सुख सागर सतलोक को सुख सागर बोला है परमात्मा ने, सतलोक को सुख सागर कहा है, कि जैसे सुख सागर की डेफिनेशन बताई है शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे पुनात्माओं ई अब आपके यह बात समझ में आवेगी। आज से 200 वर्ष पहले, 150-200 वर्ष पहले और उससे और पीछे जाओगे तो इंसान इतना दुखी नहीं था जितना ईब दुखी है। और अब हमने ये माया का जो नकली सुख गणा दिखे, जैसे कार होगी, कोठी होगी, अच्छे चटक मटक कपड़े, सुंदर पहन न हो गए, तो हम आज नो दिखे हैं कि बड़े समाज जो है ना विकसित हो गया, शिक्षित हो गया और बड़ा सुखी है। इतना महादुखी है कितने देख लो जाके ऑफिस में, देख ले जो नौकरी करते हैं 24 घंटे टेंशन रहती है। घर में देख ले आज इसी आग लग रही है ना, सास बहू की बनती है, ननंद केला बहू भाभी केला झगड़ा बहु आपस में, यानी 100 प्रकार की व्यवस्था, भाई भाई का आपस में मोटाओ, बच्चे होते थोड़े सियाने जब पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। तो कोई भी जीव सुखी नहीं है। अब आपका यह बात समझ में आएगी। अगर 200-100 वर्ष पहले भी परमात्मा भी आए थे, एक तो शिक्षा का अभाव गणा था और दूसरा ये था कि आदमी अपनी इतना काल नहीं था जितना वर्तमान में है, इतनी बीमारियां दुख नहीं थे, अच्छा आहार था। आज से 50 वर्ष पहले की तो हमें याद है, कम से कम 10-12 साल के हम समझने लगे थे। उसमें जो हम दूध घी और अन्य अन्न आहार करते थे वो टेस्ट आज नहीं रहा उस अन्न में, ना घी में रहा ना दूध में रहा, और ना वो शरीर ऐसा स्वस्थ और ऐसा तगड़ा रह रहा। तो कहने का भाव यह है कि पहले हम बहुत ठीक थे और भगवान को हम उसी समय चाहते हैं जब चौगर्दे हमारी जो है ना बिरानवाटी हो ले। तो आज कोई सुखी नहीं है और इसलिए परमात्मा एक ऐसी है, ऐसी शक्ति है, उसको बारे में हमें पता भी होता है कि जो किसी से भी कामना बनाओ भगवान की आग्रह, तो फिर हम भगवान की तलाश में चलते हैं। तो आज एक और हमारे लिए वरदान बन गया कि हमने, आप जी ने अब से पहले जितने भी आपके पूज्य देव थे सारे अजमा के देख लिए और जितने संत थे पंथ थे उड़े धक्के खा के देख लिए, कोई लाभ नहीं हुआ। और फिर यहां आके देख लो, रोज नए सुख देगा आपको परमात्मा, और सुख देगा इसलिए कि आप फिर यहां आया करोगे और भगवान के इस गुण को समझोगे, परमात्मा को पहचान पाओगे। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। एक कभी कभी किसी दिन आपके मन में एक ऐसी हिलोर उठती है, इतना आनंद सा बन जाता है, ना कोई बुरा लगता है, दुश्मन के प्रति भी आपका कोई विरोध नहीं रहता अपने ऑटोमेटिकली। अगर उसके प्रति आप ईर्ष्या पैदा करने चाहो ना, उस क्षण में वह भी नहीं हो सकती। ये दास के साथ घनी बार बीतरी है और उसके जाने के बाद वह होती है थोड़ी बहुत देर की, बस ज्यादा ज्यादा 1-2 मिनट रह जाया करे कई बार। उसके बाद फिर वो खचड़ा भरा ही अंदर से, वो अपना ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने ऐसा नहीं किया, ये नहीं हुआ, उसका देना था उसका लेना था, ये कैर की लहर शुरू होगी। वो मेहर की लहर थी, यानी सबके ऊपर दया भाव बन गया। कहते ऐसी सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, अचल यानी शाश्वत जो कभी समाप्त ना हो, अविनाशी और सुख का सागर, सागर माने समुन्द्र, ओहो अब एक एक शब्द में इतना गूढ़ रहस्य भरा, जैसे समुद्र ना आप देखो, इस सागर सुख सागर के समझाने के लिए, समुद्र में कभी देखा हो जाकर के, जब समुद्र में 100 किलोमीटर चला जाता है तो पीछे की कोई वस्तु नहीं दिखती और आगे की नहीं दिखती, केवल जल ही जल दिखाई देता है। तो कहते हैं उस परमात्मा सच्चे लोक में सतलोक में जाने के बाद वहां वो सुख का सागर है जहां जल ही जल, यानी सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, दुख नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते तू यहां कित आ फंस्या और निकल ले यहां से, चलो वहां चलते हैं। एक बात विचार करना पुण्यात्मा, यहां से दिल हटाने के लिए ये बातें, ये फार्मूले आपके काम आवेंगे कि आप जी ने यहां से तो जाना पड़ेगा, आपकी मृत्यु डेफिनेट है और मृत्यु होगी और जाना भी पड़ेगा। जिस वस्तु को आप अपना मान रहे हैं वो आपकी नहीं है, आपने पहले ना पता था तो ये बिल्कुल नोट कर लेना किधर डायरी में, ये आपकी कुछ भी नहीं है, ना बेटा तेरा है ना बेटी तेरी है, ना कार आपकी है ना कोठी आपकी है, ये काया भी आपकी नहीं है। तो जब हमने मरना तो है ही, चलो जब तक हम यहां हैं, हमारा परिवार है, इस परिवार को भी भगवान के चरणों में लगा दे, इनका आप रुखाड़ा होगा, हम बच्चे की कहां तक रखवाल कर सकते हैं, हम खेत में जा रहे हैं या अपने कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई दुकान पर कोई मजदूरी पर, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां कौन रखवाल करेगा, क्या हम करते हैं? और ना जाने कितनी दुर्घटनाओं में क्या क्या घटना घट रही है। तो कहने का भाव यह है कि इस जो हम पर बच्चों को भी अपने भगवान की आश्रित कर देंगे, इनका भी शुभ कर्म शुरू होगा, आई बला इनकी भी टलेंगी। तो फिर ये सोच कर रखे कि हमने जाना पड़ेगा यहां से, तो जाना है तो इसी जगह क्यों ना जाऊं, फिर बोर्ड का ना आना पड़े। अगर मान लीजिए आपका यहां जन्म हो गया दूसरा, तो गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो उसने के चाटेंगे, यहां के इस व्यवस्था से हम नुदल हटाए, और जो ढीठ है जिनकी, क्योंकि पिछले ज्ञान अज्ञान को गणा सुन रखा, ये ज्ञान अभी तक में मिला नहीं था, इस आधार पर हम इतने ढीठ हो गए। एक बार ये दास एक भगत ने सत्संग सुना रहा था, जो पहले थोड़े बहुत होते थे भगत, कोई आ जाता था उसको वैसे बैठ कर सुनाते रहते थे चर्चा, शुरुआत एक एक दो दो करी थी, तो वो कहने लगा जी आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं लगती, मैंने प्रमाण साथ है और मैं हूं दुन का पक्का, मैं जिस काम पर लग गया करूं उसने पूरा करके छोड़ दिया करूं, और यू ज्ञान आज से पहले आपने आपसे पहले किसी ने नहीं बताया, और मन ने इस बात का डर लग गया कि जब मैं भक्ति कर वहां पहुंच जाऊं सतलोक में कोई भी ना पावे, तो मैं यू आपकी भक्ति करूं को ना, यह जवाब बता रहे हो। मैं बोला क्यों ना करे, ना कतिए कौन करूं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एकला चला गया तो वहां दिक्कत हो जाएगी। मैं बोला तू यहां मर गया और मरने के बाद तू गधा बन गया, कुत्ता बन गया, यहां के टिड्डे लेगा। नहीं बोला कोई बात ना, घूमते फिरते दिखे जाएंगे, जी ला गया रहेगा। यानी गधे कुत्ते बनकर आंडना या बदके खाना मंजूर है, क्यों? क्योंकि जी ला गया रहेगा, देखते रहेंगे एक दूसरे ने। तो अब उसका दोष भी नहीं मानता दास, क्योंकि हमने अभी तक ये जन्म और मृत्यु यहीं की व्यवस्था में हम रंगे जा चुके, अब इस इन एंटीबायोटिक से, इस यथार्थ ज्ञान से फिर यहां से मन हटेगा, और यहां से मन हट लेगा तब हम वहां हमारा अगला पैर जागा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहां से हट लेगा तब हमारी वहां सुरती दिन रात वहीं रहेगी। हे भगवान यहां जन्म ना देना, हे परमात्मा यहां जन्म ना देना, क्योंकि जन्म होते ही फिर हुआ बीमारी शुरू। मान ले मनुष्य भी बन गए, अच्छी भक्ति कर रहे हैं और पार हुए कोई ना, फिर वो जन्म होते ही इतना इतना बड़ा विस्ता युग बैग कमर पर दस स्कूल में, वहां ना कुछ याद होता, देव मास्टर डंडम डंडा, फिर पढ़ लिए चलो, फिर को नौकरी लगी नहीं, धक्के खानता अंडा पर पीटता अंडा, कोई बालक फिर बच्चे हो गए, कोई मर गया कोई जी गया, यानी यो प्रोसीजर फिर शुरू। इसका अंत तक हो ना, अब अंत होगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं तू यहां जो इन सुखों को तो सुख मानकर यहां जकड़ा हुआ है उसके विषय बताते हैं। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे, यानी तू यहां महिमा बनाना चाहता है कोई जैसे दो कोठी बना ली बढ़िया है, आसपास के गांव में नगर में चर्चा होगी, बड़ा पैसे वाला आदमी बनगी महिमा। फिर कोई राजनेता हो गया है और कोई अच्छा एक आधा कोई काम कर दिया, फिर वहां यश हो गया, फिर उसका बना दिया कोई स्टेच्यू, और उस स्टेच्यू तो बना रखा है यहां तो लोग साल भर में उसकी एक बार कोई जन्मदिन मना ले है, वो बन रहा है कुत्ता और स्टेच्यू पे मूत का जा अपने पे, या कौवा बन के ऊपर बीट करे उससे पे बैठ के, तो के महिमा हुई, के यश हुआ, ये वो दुर्गदा बना हुआ है और उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है यहां पर एक महान नेता होने के कारण। तो परमात्मा कहते इन बातें इन ज्ञान, क्योंकि हमने वो ज्ञान सुन रखा उसी में हम रंगे पड़े हैं, अब इसको सुनोगे तो वो जल्दी उतर जाएगा क्योंकि तो कच्चा रंग है। तो क्या बताते हैं, मन तू बसरे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं कि तू मान लीजिए आप जी कितने कमाई कर लोगे, कितना धन इकट्ठा कर सकते हो इस सारे जीवन में, और उससे क्या प्राप्ति होगी, क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुके सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुके सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनकर शिशुवर कल्प करी तब खोज न पाया राई। मन तू सुके सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुके सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, ग्यारह अक्षौणी संग चले थी व देही गीद ना खाई। मन तू सुके सागर बसरे, हे भाई और न ऐसा यसरे। साठ हजार सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, साठ हजार सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक पुत्र उतान पात का वो देव पद को पाए। मन तू सुके सागर पसरे, भाई और न ऐसा यसरे। भाई राम नाम पर लाद पड़े थे अरणक से पूना भाए, राम नाम पर लाद पड़े थे अरणक से पूना भाए, नरसिंह रूप धरे नारायण वो खंभ पाड़ के आए। मन तू सुके सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुके सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। भाई नामदेव नाम प्रभु काटते, नामदेव नाम निरंजन रहते जाकी छान छवाई, नामदेव नाम निरंजन रहते जाकी छान छवाई, एक पलक में देवल फेरा वो मृतक गऊ जवाई। मन तू सुके सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। भाई काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई, काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई, बन के सो बन जारा उतरे वनो लख बालद आई मन तू सुके सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा, कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पाव वो मगहर मुक्त विलासा मन तू सुके सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुके सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब यहां इस शब्द के अंदर संत गरीबदास जी ने परमेश्वर की महिमा सारी बता दी। क्या बताया है कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज विराजी अर्जम के पड़े जजीर। सारी सोने की लंका बना रखी थी, सोने की स्वर्ण की गोल्ड की, और सूरवीर था रावण, और जब उसका अंत हुआ एक पलक में राज विराजी यानी राज से रहित हो गए और काल के फंद गिर गए। पता नहीं किसी और नहीं मजा होगा। फिर बताते हैं उदय अष्ट भी चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, और चुनक ऋषि स्वर कल्प करी फिर खोज न पाया राई। पिछले पुनः के आधार से एक मान दाता नामक चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी पर उसका शासन था, और एक बार फिर उसके जब समय आ जाता है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है अगर भक्ति करते को ना, नौ दुरुक्ति आकर उनकी, उसने एक घोड़ा छोड़ दिया, उसके साथ सैकड़ों सैनिक साथ भेज दिए, और घोड़े के गले में एक पंपलेट लटका दिया कि जिसने पृथ्वी के ऊपर जिस भी किसी नीचे छोटे राजा ने किसी नरेश ने चक्रवर्ती राजा यानी मानधाता राजा की अधीनता स्वीकार नहीं है, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जा और घोड़े को पकड़ ले। तो वो घोड़ा सब जगह घूमया, किसी ने नहीं पकड़ा। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उन्होंने वेदों अनुसार ज्ञान को अपने आप निष्कर्ष निकाला कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर, क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई हुई है, लिखी हुई है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की ही है, ओम नाम का जाप है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए उसकी विधि साधना के जानकारी के लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि कोई तत्वदर्शी संत जो परमेश्वर की वाणी से परिचित हो उससे जाकर उपदेश ग्रहण करो, वो बताएगा पूर्ण परमात्मा के पाने का मार्ग। इस बात को वो समझ नहीं सके, उन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का जानकर साधना शुरू कर दी। हजारों वर्ष तक साधना करते रहे, साथ में हठ योग करते रहे, एक स्थान पर बैठकर उससे सिद्धियां आ जाती है। अब उस ऋषि ने देखा कि ये घोड़ा जिसके ऊपर कोई विराजमान नहीं है, सैनिकों से उसका कारण जाना कि इस घोड़े पर आदमी सवार क्यों नहीं है, सब बताया कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का पर्सनल औरस है और इस पर कोई नहीं बैठ सकता, इसके गले में ये लिखा हुआ, इसमें लिखा है कि जो राजा जो भी कोई नरेश और चक्रवर्ती राजा के अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, घोड़े न बांध ले। अब जब खोटे लग गए हैं ना, न्यू लग गए, अब उधर से उस ऋषि के भी खोटे लग गए, उधर से उस मानदाता चक्रवर्ती के भी बुरे दिन आ गए। अब चुनक नाम के ऋषि ने वेदों तक की साधना, काल की साधना की, और एटम बम बन गया उसके मन में। फिर काल के हाथ में रिमोट है, मन में उत्पन्न कर दी ये भावना कि राजा को अभिमान हो गया, इसके अभिमान को मैं ठीक करूंगा। तो उस ऋषि ने कहा कि भाई सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूं, राजा का युद्ध मैंने स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे, रे कंगले, तेरे दाने खाना नहीं, दाने तो खाने को नहीं, और तू युद्ध करेगा चक्रवर्ती राजा से, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सामत आ रही है, अपना बैठ के भक्ति कर ले, रट ले राम, टाइम पास कर। तो वो कहने लगा, भाई मैंने जो कह दिया ना, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया। तो सैनिकों ने वो घोड़ा बांध दिया उसी वृक्ष का, जिस वृक्ष के नीचे झोंपड़ी थी मां इस सुनक ऋषि की, और राजा को बता दिया कि आपका युद्ध एक चुनक नाम के ऋषि ने स्वीकार कर लिया। राजा के पास 72 करोड़ सेना थी, उसकी चार टुकड़ी की, चार विभाग की है, 18-18 करोड़ के, एक टुकड़ी को भेज दिया एक आदमी को मारने के लिए, यानी औरों को भी खोप हो जाए, कोई काल ने और शीश ना उठावे, ये चाणक्य नीति होती है। तो उधर से ऋषि ने अपने जीवन काल में जो डले डोए थे उसकी चार पुतली बना ली, चार एटम बम बना दिए, सिद्धि से, वचन में बहुत बड़ी पावर होती है, उससे एटम बम बना लिए चार, एक टुकड़ी आई एक एटम बम छोड़ दिया, और उसने 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। दूसरी टुकड़ी राजा ने भेजी तो उसने दूसरी पुतली छोड़ दी, तीसरी सेना टुकड़ी भेजी तो तीसरी छोड़ दी, ऐसे चौथी भेजी चौथी छोड़ दी, यानी मान धाता चक्रवर्ती उदय अस्त पर जिसका राज था, यानी सूर्य उदय हुए अस्त तक और छिपे जहां तक, अर्थात पूरी पृथ्वी पर राज्य था, उसका सर्वनाश हो गया। और उधर से ऋषि, वो चुनक ऋषि इस बात से सारा प्रसिद्ध हो गया, उसका यश हो गया। पहले मानदाता चक्रवर्ती का यश था, महिमा थी, पूरे पृथ्वी का शासक है, सारी पृथ्वी पर राजा, वो झूठा यश। उधर से उस ऋषि की कायस हो गया, बड़ा महान ऋषि था, उसने ऐसा कर दिया। अब इस महान ऋषि की विरान मट्टी होगी, क्योंकर होगी कि जब तक यहां क्या है, जब तक इस परमात्मा कबीर जी की साधना हमें प्राप्त नहीं होती, यथार्थ मार्ग नहीं मिलता, तब तक हम वेदानुसार गीतानुसार जैसा भी साधना करते हैं और जैसे पुण्य पाप करते हैं, वो दोनों ही अकाउंट खुले रहते हैं। बुरे जो पाप हैं वो बैड अकाउंट में, और पुण्य है या भक्ति है वो गुड अकाउंट में, दोनों जमा हो जाते हैं, और इस प्राणी को दोनों ही भोगने पड़ते हैं। अभी तक आपने सुना था जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यहां का इतना नियम था, ये ना तो पाप काट सकते थे ना पुण्यों में काट कम बत्ती कर सकते थे। पुण्य भी आपको पूरे देते हैं, जैसे आज देख रहे हो कोई अच्छे पोस्ट है, किसी के पास घना धन है, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, कोई कार में चलते हैं, ये उनके पुण्य हैं और सारे ही देगा। और सत भक्ति नहीं कर रहे तो पाप की गठड़ी रोज एक बांध लेते हैं, एक गठड़ एक पोटली, यानी पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे, अपने पेट धंधे के लिए एक दिन में कहते हैं करोड़ों जीवों की हिंसा करके ये जीव विश्राम पाता है वो बैड अकाउंट में, और पुण्य कोई बन नहीं पाता क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं उनसे पुण्य नहीं हो सकता, पुण्य करने के लिए एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जैसा भी वो पुण्य करने के लिए थोड़ा समय, जैसे पहले हम के पुण्य कराया करते, एक बार साल अवसर चले गए हनुमान जी की पूजा करने साल में, और मंगलवार के दिन 100 रुपये की बूंदी बांट देते हैं, थोड़ी धार्मिकता थी, कभी ऊपर चिड़िया को टूक डाल देते, कभी दाने डाल देते, इतने काम कराया करते। तो वो जो हम जो पुण्य थोड़े वो तम मानते थे वो तो हमारे इतने, और पाप सारा दिन गठड़ी बांध ले चाहे पूरी मालगाड़ी भर ले। तो कहने का भाव यह है कि उस ऋषि ने जो पुण्य किए थे वो भी भोगेगा, स्वर्ग में चला गया, महास्वर्ग में चला गया इस ओम नाम के जापते हैं, ब्रह्म तक की साधन। वहां भी कहते गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत, यानी ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं वहां गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म आते हैं। तो इस ऋषि ने जो 72 करोड़ सेना का नाश कराया, अब चाहे तो कोई हथियार तो मार दे चाहे कोई अपने श्राप तो मार दे, दोनों का पाप बराबर है। अपनी सिद्धि शक्ति से मार दे, उसके पास वही हथियार है, तो दोनों का पाप बराबर है। तो फिर ये ऋषि अपने पुण्य पूरे कर लेगा, वहां पर खत्म कर देगा, फिर ये तुणक ऋषि कुत्ता बनेगा और इसके सिर में जख्म होगा और वह जितने सैनिक मारे हुए कीड़े बनकर इसको नोच नोच कर खाओगे। तो यहां परमात्मा एक के तीर में कई शिकार कर रहे हैं भाई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषि स्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यश रे। यहाँ के झूठे यश हैं, झूठी महिमाएं हैं, कहते हैं यहां से पीछा छुटवा ले। फिर जो परमात्मा की शरण में आए हैं उनके साथ कैसी मदद करता है मालिक भाई। राम नाम प्रह्लाद पढ़े थे अरणा कुसना भाई, उसका पिता ही दुश्मन बन गया प्रह्लाद का, उसका अरण्यकश्यपु, क्योंकि प्रह्लाद कहा करते पिताजी परमात्मा की भक्ति से ही जीव कल्याण हो सकता है, आपके नाम से आपकी भक्ति से नहीं हो सकता। इससे बात पर पिता पुत्र का झगड़ा शुरू हो गया। मान बड़ाई में आकर के मेरा ही पुत्र मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो खूब यातनाएं दी, आखिर में परमात्मा ने उसका बक्कल तारा। कहते हैं ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई अरण्यक से पूछा ती तुड़वाई। तो यहां कहते हैं राम नाम प्रह्लाद पढ़े थे अरण्यक से पू ना भाए, यानी उसने अच्छा नहीं लग गया, और नरसिंह रूप धरे नारायण खंब पाड़ के आए, कि जो भक्ति करते हो आपके साथ भगवान रहेगा, आप प्राप्तियां आएंगी उनको हल्का करेगा और बिल्कुल को आखिर कर देगा, अनर्थ कर देगा, फिर आकर भगवान उसका बक्कल तारेगा, उनकी मदद की जाती है। और ये जैसे मानदाता जैसे चक्रवर्ती, पूरी पृथ्वी का राजा जो सत भक्ति नहीं कर रहा था उसकी ब्रह्म मट्टी हुई, कुल नाश हुआ। ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम कि यहां के सुख को और भक्ति नहीं करते उन व्यक्तियों का, और जो साधना सत करते हैं उन भक्तों की में कितना अंतर होता चला जाएगा। नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई, नामदेव जी कहते हैं परमात्मा की भक्ति किया करते थे, तो उसके साथ कैसी लीला की परमात्मा ने। नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई, एक पलक में मंदिर फेरा व मृतक गौ जवाई, मन तू सुके सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अभी नामदेव जी के बारे में आपको बताया था, नामदेव जी इस रोहिला कास्ट में छिपा जाति में, छिम्बी बोले हमारे का ना, छिम्बी जाति में इनका जन्म था। ये पूर्व संस्कार के बहुत अच्छे, पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, और जिनके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं भक्ति के, वो डटे नहीं डटा करते, उनके अंदर वो अपने आप अंगड़ाई लेती है वह भक्ति। परमात्मा स्वयं कबीर जी भी जगह जगह आते हैं, रूपांतर कर लेते हैं भक्ति की सतिथि बनाए रखने के लिए, और काल भगवान चाहता है कि ये भक्ति नाश हो जाए, भगवान में आस्था किसी की रह नहीं, ये गलत साधनाएं करें, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं करके ये जीव ये मनुष्य परमात्मा के लाभ से वंचित रहे और इनके मन में भगवान की आस्था हट जाए, ये नास्तिक हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, चीन कंट्री, उधर से रूस नास्तिक हो गया। पहले सभी धार्मिक थे और चीन जो है महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, उनके द्वारा बताया गया साधन भक्ति से किसी को लाभ हुआ को आध्यात्मिक, तो उन्होंने यही मान लिया कि भक्ति तो अपने ही कर्म से हम करके जो हाथों से वही लाभ उठा सकते हैं, परमात्मा कोई लाभ नहीं देता और काल यही चावे है। तो ऐसे ये काल हमारे साथ ठगी कर रहा है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी स्वयं आते हैं और अपने अपनी महिमा बनाकर चले जाते हैं, ताकि जब तक ये कलयुग ये समय है वो जिसके लिए भगवान आते रहे, ये वेद प्रमाण देते हैं। और अपनी भगवान की स्थिति के परमात्मा कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, अनहोनी कर सकता है, होनी कर सकता है, अनहोनी को होनी कर सकता है, और तभी हमारी आस्था भगवान में बनी रहती है। तो नामदेव जी ने परमात्मा कबीर जी से उपदेश लेने से पहले, और पुराने संस्कार से जैसे हम कोई गुरु नहीं बना रखा था, फिर भी इतनी धार्मिकता थी, भगवान की मंत्र करते थे सुबह से हम, जो भी जैसा याद था श्रद्धा थी पूरी, ऐसे नामदेव जी में एक बार एक मंदिर में आरती चल रही थी और नामदेव जी, और उसमें क्या था कि उस मंदिर में ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी अन्य को प्रवेश नहीं होने दिया जाता था। मंदिर में आरती चल रही थी, घंटियां बज रही थी और नामदेव जी किसी काम वश उस मंदिर के पास से गुजर रहे थे। वो इतने विभोर हो गए भगवान की भक्ति में, वो आरती गाने लग गए और आत्मा जूते निकाल कर घंटी बना ली, घंटी बजाने लगे और बजाते बजाते उन मंदिर में चढ़ गए और उन ब्राह्मणों की अंदर से घुसते हुए और मूर्ति के सामने खड़े होकर ऐसे वो जूतों से घंटी बजाने लगे मंदिर में। अब ब्राह्मणों ने उसका पकड़कर, उस पुजारी ने पकड़कर उसको और मंदिर के पीछे पटक दिया कि इसने हमारा बट्ठा बैठा दिया, भ्रष्ट कर दिए, इसने जूतों समेत आ गया, ये दूसरी जाति का, छोटी जाति का। अब नामदेव जी पीछे धक्का दिया, पीछे बैक साइड में पड़ गए और पड़े पड़े भी उस भगवान की आरती गा रहे हैं और वो घंटी बजा रहे हैं जूतों से। परमात्मा ने उस मंदिर का मुंह, परमेश्वर ने उस मंदिर का मुंह नामदेव जी की तरफ कर दिया और वो पंडित पिछला काना घंटी पीटे बैक साइड होगी। अब परमात्मा का नाम लेने से, कबीर जी की शरण में आने से पहले भी नामदेव जी साधना करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उसमें पिछले संस्कार थे। और फिर परमात्मा का नाम लेने के बाद परमात्मा जिस स्थिति पर उनको लाना चाहते थे कि इस ओम से ऊपर भी कोई और मंत्र है, इसको नामदेव जी स्वीकार करना नहीं चाहते थे। भले गुरु बना रखे थे लेकिन उनके मन में जगह नहीं थी सतनाम प्राप्ति की। तो उधर से क्या, नामदेव जी दो तीन दिन के बाद उस रंका और बंका के घर पर गए, क्योंकि गुरु भाई होने के, बाण भाई होने के कारण आपस में कभी कभी बैठकर चर्चा किया करते थे। तो जो ही वो नामदेव जी रंका के घर पर गया, वहां के देखा कि उनकी लड़की वंका एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे देसी हिसाब किताब ते कोजड़ी बट्टी कूट काट के पट्टी तैयार करे थी किसी जख्म पर बांधने के लिए। नामदेव ने पूछा, बहन क्या हो गया, किसको क्या लग गया, क्या आंटी को कुछ हो गया या अंकल का कुछ चोट लग गई? कहने लगी, रे नामदेव तू बाज नहीं आता। वह कहने लगी, नामदेव तू बाज नहीं आता और तू भगवान को बहुत दुखी करता गुरुदेव को। नामदेव जी ने कहा, क्या हो गया बहन? कि तूने वहां के जरूर थी उस मंदिर में वर्णन की ब्राह्मणा के बीच में है, परमात्मा ने तेरे लिए वो मंदिर फेरा, तेरी तरफ तो मुंह करा गुरु जी ने और उनकी तरफ पीठ करी, नो कैसे करा गुरु जी ने कहा, उनका भाई हाथ का चोट लाग गई। अब परमात्मा कहते हैं सौ साल सीधर मैं करूं, हम इतने ढीठ हैं गुरु भी बना लेते हैं लेकिन अपने आड़ी जो पुरानी अटकल है उससे नीचे नहीं आते ना उसे ऊपर चलने की चेष्टा करते। तो परमात्मा सौ तरह के तरीके अपना के उस काल के गढ़ को हटाता है उसके दिल से। नामदेव जी के मन में इसी प्रकार आस्था बनानी थी तो कहने लगे रे आए सचमुच गुरु जी के चोट लगी अकोर गणी चोट लगी वाइजा देख का। नामदेव जी गया उस गुरु जी के पास, गुरु जी के वह भी लड़की भी साथ गई, पूरा जख्म हो रहा हाथों में और लड़की ने दोनों हाथों के पट्टी बांध दी। नामदेव जी चरणाम पड़ गए, नो बोले गुरुदेव माफ कर दो मुझ पापी ने, मैं तेने सोचू था मेरी भक्ति है तो सब कुछ हो रहा है, आप तो मेरे साथ चल रहे हो। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये हो भी सकता था, तो करा तो मैंने ही है लेकिन तेरी भक्ति से ही, लेकिन ये पूर्व जन्म की भक्ति है, भविष्य की भक्ति तेरी कति नहीं बन रही। इस ओम के ऊपर एक और मंत्र है, उस मंत्र से और लाभ होगा बेटा, वो प्राप्त करे। तब नामदेव जी ने कहा प्रभु जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही कर लूंगा, मैं बहुत दुष्ट हूं, मैंने बहुत गलती कर दी, आपको बहुत तंग कर दिया। तो उसके बारे में गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, कबीर परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत नामा छिपा ओम तारी पीछे सो हम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बहुर ना होई। नामदेव जी छिपी जाति में थे, कहते नामा छिपा ओम तारी, ओम पर ही आरूढ़ हो रहा था वो, और पीछे उस दूसरे मंत्र का भेद बेचारा जो सतनाम में दो मंत्र होते हैं और उनसे भी काम नहीं चलता। कहते सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बोड़ ना होई, यानी सार शब्द फिर उसको प्राप्त हुआ तो इस दो मंत्र से ऊपर फिर एक सार नाम होता है। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं की यहां का जो सुख है ये नकली सुख है, जो ओरिजिनल सुख है सतलोक में है और उसको प्राप्ति का अब विधि भी और साधन पूरा आपके आपको प्राप्त होगा। और जो पुण्यात्मा उनको जो काफी समय से भगवान को समझ चुके हैं लगे हुए हैं उनको वो मार्ग प्राप्त हो चुका है। तो अब इसमें इस प्रकार की जो वचन मालिक के हैं इनको याद रखना है और ये आपका एक गायत्री मंत्र बन जावे। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है जो हमारे हरदम मन में उसका उच्चारण गायन बनता रहे, तो मतलब वो याद रहे वो चीज रह रहकर। मंत्र तो हमने और जपना है लेकिन ये एक फार्मूले याद रहे क्या, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। फिर दूसरी बात के याद रहे भाई सर्व सोने की लंका होती वो रावण से रणधीरम, सर्व सोने की लंका होती वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुखे सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। फिर क्या बताते हैं, मन तू बसरे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू बसरे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब यहां से मन हटाने के लिए, क्योंकि काल के लोक में हम रह रहे हैं, आप जी यहां से जाते हो परिवार में हो सकता पूरा परिवार भी उपदेशी हो आपका, नहीं तो ज्यादातर किसी परिवार में दो नाम ले रखा है किसी ने एक न ले रखा है, और पूरा परिवार भी अगर उपदेशी है तो ना रिश्तेदारी में कोई या चर्चा है, ना पड़ोस में है, ना गांव में, ना कहीं आप कार्य में जाते वहां कोई चर्चा नहीं मान लिख के। तो आपको इसलिए ये बताया जाता है कि ये रह रह कर याद रखो इस बात ने, नहीं तो संसार की चकाचौंध में आपको भूल पड़ जाएगी। किक याद रखे, मन तू बसरे सुके सागर जहां शब्द सिंधुरत नागर। कोट जन्म तन भ्रमित हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा क्यों न्या, मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर गुम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये बारग ना मिलने से जो आज आपको प्राप्त है, ये आध्यात्मिक यानी सत्य मार्ग तत्व ज्ञान ना मिलने से आप जी ने कैसी कैसी सुविधाएं भी प्राप्त की ओम तक के नाम की जाप करके, क्योंकि पहले सब वेदों अनुसार साधना ही करते थे। या तो कलयुग में काल ने बिजली गिरनी थी, 36 पंथ बना दिए, 36 नाम नारे नारे बना दिए, नून को कोई लाभ होना ही नहीं, सब दुखी हो गए। वेदों अनुसार साधना करने से भी जीव को, जैसे आप जी को महावीर जैन जी की जो जीवनी कई बार दिखाते हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई यानी जैनियों के द्वारा लिखी हुई, तो उसमें क्या लिख रखा है कि 30 करोड़ बार तक गधा बना, 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता, और विवरण कितना लिख रखा है, और फिर लिखा 80 लाख वर्ष बार, 80 लाख बार देवता बने। तो ये तो वो ये है यहां का कि पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग, पुण्य भी भोगने हैं पाप भी। ये जो परमात्मा का जो विधान है ये क्लियर हुआ। तो 80 लाख बार तो देवता बन गए महावीर जैन जी का जीव, और 60 करोड़ बार गदा तो एक कब बना बतेरा, 60 करोड़ तो बहुत बुंडा काम हो जाए उसके जी ने। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कोट जन्म तन भ्रमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लग्या रे, आज आप करोड़पति हैं और कल मृत्यु हो जाए फिर क्या गदापति, उड़ा कि कुमार का फस्या पावे दे लठम लठा। तो परमात्मा कह रहे कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर कुत्ता गधा सुअर खर, कुकर सुकर खर बया बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, अब छोटी मोटी कोई सुविधा प्राप्त करके तू चौड़ा हो रहा है, करोड़ जन्म तो तू राजा बन लिया, फिर ब्रान माटी होगा मेरा, और फिर मांगता फिर मनुष्य जीवन हुआ तो फिर मन माना कि तो मजदूर बन गया। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। आप देखते हो जैसे कोई सरपंच बन जाता है तो इतना सोचा है मैं अगले बार चेयरमैन बनू ब्लॉक का, फिर वो भी मान ले सूत बैठ जाए, सोचा कि एमएलए में टिकट मिला है, एमएलए बन जाता है तेने सोचा मंत्री का दाव तो लगे ही लगे, और मंत्री बन जाए तेने उकड़ू हो जाए, सोचे शायद अगली योजना में चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये उसकी नीति रहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनू, और फिर के पर फिर काल के बना देता है, जब इनकी पुण्य समाप्त हो जाते हैं वो वहीं कड़च कर देता है। जैसे पीछे आपने पढ़ा था आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से क्रश हो गया, 3 दिन में तो उसकी लाश पाई थी, कित पड़े आशा हो, और उनकी पता नहीं क्या क्या आशाएं थी। बात ये नहीं है कि आप ना मरोगे राम ना मरांगे, लेकिन हम मरांगे तो लेकिन भक्ति की गिठड़ी बांध के ले जाएंगे, संग्रह करके हम खाली नहीं जावांगे, और इस भक्ति के कारण हम सतलोक पहुंच जाएंगे जहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कहते कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, नहीं यू कर दूंगा यू कर दूंगा, और फिर इतने टिकट कट ले, जो करना था वो छेड़े भी, वो शुरुआत भी ना करी जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से। बात ये नहीं है कि हम संसारी काम ना करा, नहीं, इस काम में संसारिक कार्य में एक इम्पोर्टेंट वर्क, एक सब्जेक्ट और लगाना पड़ेगा इस भक्ति और भगवान का। तो कहते हैं कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर गो मिलिया, मिला नी निर्गुंड आशा। यानी ऐसी भी साधना तूने कर ली कि एक बार नगरी से भिक्षा मांग लिया और उसको जाकर रख लिया, खाली वो खाली अगले दिन के लिए वर्क्स का टांग दिया करते रोटियां कपड़े में बांध के, बस सूख जाती थी, खराब नहीं होती जो सूख जाती है, तो अगले दिन मांगने नहीं जाते थे, अगले दिन उनको भिगो के पानी में खा लेते थे, और भजन जो साधना उनको प्राप्त थी वो यथार्थ नहीं थी। यानी अन्य साधना जो सत नाम को छोड़कर जो भी साधना करते हैं वो तुम करके कहते हैं भिक्षकों के दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रसा। अब उन साधनाओं से जैसे स्वर्ग से लाया गया, स्वर्ग से फिर आ गया, अपने कर्म समाप्त करके पुण्य समाप्त करके फिर पाप कर्म के आधार पर पशु बन गया, कहते मिला ना निर्गुण रसा, यानी ये मार्ग नहीं मिला तुझे। इसके ना मिलने से इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया और विष्णु नाथ के लोक को जाके तू फिर भी उल्टा आया। असंग धर्म तन मृत्या हो गए जीवित को नाम रह रे और द्वादश मध महल मठ भोरे भोर न दे धरे रे। अभी तक आप जी ने दसवां द्वार सुना था, परमात्मा की वाणी में बारहवां द्वार को पार करके हम सतलोक में जाएंगे। अब पुण्यात्माओं, अब बारहवां द्वार बताया जाता है तो एकदम झटका लगे। पुण्यात्मा तो इस चीज से प्रभावित होते हैं कि हमने तार्तिक दसवां द्वार सुना था, तो बारहवां द्वार परमात्मा की वाणी और ये संत बता रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दास जो बताएगा वो अपने सदग्रंथों में लिखी होगी और जो सदग्रंथों में लिखी वो फाइनल होगी। तो हमने दसवां द्वार सुना था, दसवां द्वार तो काल के लोक में ही रहने का है, जो ग्यारहवां द्वार है वो परब्रह्म के लोक में खुलता है, बारहवां द्वार है वो परम अक्षर ब्रह्म के यानी सतलोक में, उस सतलोक में खुलता है। द्वादश मध महल मठ बौरे बहुर ना दे धरेरी, यानी सतलोक के अंदर बारहवां द्वार पार करके वो सतलोक है, वहां वो फिर वहां जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा।